आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट सारथी। पिछले एपिसोड में हमने शिखा से बात करी थी और उनसे समझा था कि उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आईं। तो आज हम अपनी बात शिखा से कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बातें समझेंगे शिखा से, उनकी शादीशुदा सफ़र के बारे में और उनको क्या दिक्कतें आईं अपने जीवन में।
तो शिखा, 6 साल में आपने जैसे बोला कि आपने अपनी मदर इन लॉ को बताया, आपने ब्रदर इन लॉ से बात करी, आपने अपने पेरेंट्स इस साइड भी बात करी, उनका क्या एटीट्यूड था कि 6 साल आप ऐसे आदमी के साथ रही जिसका बिहेवियर
मैंने मेरे माँ बाप को पता था, वो जब भी कलकत्ता आते थे मिलने के लिए या कुछ, तो उन्होंने देखा है उसका बिहेवियर, पर उनको ये नहीं पता था कि वो ऐसे इस तरह से मुझ पे हाथ उठाते हैं। उनको लगा कि एक कभी कभार अगर हाथ थप्पड़ मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको थोड़ा सा संभाल लो उसको, इसके लिए शादी तोड़ना एकदम, मैं तो मेरे पेरेंट्स वर नॉट रेडी शादी तोड़ना बच्चों के लिए, मेरे लिए वो लोग एकदम भी रेडी नहीं थे। मुझे उन्हें बहुत समझाना पड़ा, मुझे उन्हें इस बात तक समझाना पड़ा कि अगर जिनके बच्चे के फादर बचपन में मर जाते हैं, वो बच्चे भी बड़े होते हैं ना, मुझे इस तरह से उन्हें बताना पड़ा कि मैं और घुट घुट के नहीं जी सकती थी। क्योंकि वो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जब वो ऑफिस जाता था तो मैं भगवान से थैंक करती थी कि थैंक गॉड वो ऑफिस चला गया, अभी 8-9 घंटे की शांति घर में।
शिखा, उसका एटीट्यूड बच्चों को लेके कैसा था?
एकदम ठंडा, कुछ कोई प्यार नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, उसके लिए प्रॉपर्टी थी कि बच्चे हैं प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है पैसे खर्चे नहीं करना था, ये नहीं करना, पैसे बहुत थे इनके पास, खर्चा कर सकते हैं करते हैं, बट जो प्यार लगाव बच्चों को होना चाहिए फादर के लिए और जो फादर को होना चाहिए वो नहीं था,
इमोशनल कनेक्ट नहीं था।
अभी भी वो कोर्ट में दिखाता है कि मुझे बच्चों की कस्टडी चाहिए, पर बच्चों से कोई लगाव नहीं है, जो भी करता है वो खाली दिखावा के लिए करता है।
So, शिखा, वो मोमेंट कब आया जब तुमने कहा कि बस अब हो गया, अब और नहीं, मतलब इसके आगे मैं नहीं सह सकती? जो एक मोमेंट होता है उसमें बहुत हिम्मत लगती है शिखा, और जब वो मोमेंट आता है तो बहुत स्ट्रेंथ अंदर से चाहिए होती है, तो कब आया वो मोमेंट और किस चीज ने आपको स्ट्रेंथ दी कि बस अब हो गया, अब और नहीं?
मैं ये मोमेंट से पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत बार कोशिश की ये 6 साल में इस शादी को तोड़ने की। मेरे शादी के तुरंत बाद अपने आप को 1 साल का टाइम दिया था कि मैं 1 साल तक कोशिश करूंगी, उसके बाद मैं नहीं रह सकती, बट बैड लक बोलू या गुड लक बोलू, आई वॉज प्रेग्नेंट एंड देन मेरा डिसीशन उस टाइम रुक गया। फिर मेरा बेटा 1.5 साल का था, तभी भी मैंने ये डिसीशन लिया था कि मैं और नहीं रह सकती। जब सेकेंड बच्चा हुआ तभी भी मैं 2 महीने मम्मी पापा के पास रही थी कि मैं और नहीं जाना चाहती, बट फिर फैमिली ने बुझा बुझा के, दोनों साइड को समझा बुझा के कि वो बिहेवियर चेंज करेंगे, हम लोग मिलके रहेंगे, तो ये कंटिन्यू रहा काफी 6 साल से। इश्यूज 6 साल में बहुत बार आए, बहुत बार हुआ कि नहीं ठीक है, बट समझा बुझा के दोनों को एक साथ रहने बोले, बट एग्जैक्टली जून 2016 में उसने एक बहुत छोटी सी चीजों के लिए मेरे पे बहुत ज्यादा चिल्लाया, गुस्सा किया, मारा, हाथ उठाया, मेरे हेड को बैन किया विंडो पेन पे, तब वो भी उसके माँ बाप के सामने जहाँ पे वो उन्होंने कुछ नहीं किया, तब मैंने अपने डिसाइड किया कि बस मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इस तरह गुजारा और नहीं कर सकती।
तो शिखा, जब आपने ये कदम लिया और मतलब बहुत ब्रेव स्टेप था आपका, और शायद जब आपकी अपनी जिंदगी ही क्राइसिस में हो तो मुझे लगता है कि या स्टेप आउट करना एक सेफ ऑप्शन है। तो शिखा, उस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम क्या था आपके पास? फ्रेंड्स, सोसाइटी, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम क्या था आपका?
खाली फैमिली, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम था। जब मैं अकेले रहने लग गई थी तो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, वो मेरे पास ही ऑलमोस्ट मेरे साथ ही रहे 1 साल बॉम्बे में।
अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद आप अलग ही रहने लग गई थी, मतलब घर छोड़ने के बाद वहीं पे ही बॉम्बे में अलग रहने लग गई थी?
मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एक अलग घर में रहते थे। मेरे
ओके
हस्बैंड मूव आउट हो गए तो मैं उस घर पे रह रही थी, तो मेरे पेरेंट्स मेरे पास आके रहे।
ओके सो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट सिस्टम था, तो बाकी सोसाइटी, जैसे हम कहते हैं ना कि सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है या बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है कभी, तो आपको सोसाइटी से कुछ लगा कि सोसाइटी का कुछ एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा था?
फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट केयर। मुझे पता था कि सोसाइटी का थोड़ा सा रवैया चेंज होगा, बट आजकल सोसाइटी थोड़ा एक्सेप्ट भी कर रही है डिवोर्सेस को। और जब तक आप श्योर हो, आपकी फैमिली साथ हो, यू शुड नॉट केयर।
एंड जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, अगर आपकी, मतलब जहाँ तक आपके हालात है कि जान पे बनाई थी, तो यस बिल्कुल, अपनी जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसको किसी भी चीज़ पे के लिए दाव पे रखना कोई सेंस नहीं
एग्जैक्टली
बनती.
ये मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग जाती और मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती या मैं मर जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता। ये केसेस बहुत सुनने में आते हैं, लड़की सुसाइड कर लेती है बिकॉज ऑफ द शोषण।
जी
उसमें किसका
बिल्कुल
नुकसान है।
बिल्कुल बिल्कुल.
और मैंने भी कोशिश की थी सुसाइड करने की, बट सो इट इज नॉट इजी, बट यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। आप दिन भर वो मेंटल स्ट्रेस से क्या नहीं जी सकते हो।
जी बिल्कुल. और आई थिंक शिखा, जिसकी वो पोजीशन होती है उससे बेहतर उसको कोई नहीं समझ सकता, तो आई थिंक हमारी कोई जगह ही नहीं है कि हम आपको जज करें या हम सोचें जो आपने किया वो क्यों किया. आई थिंक आप उस चीज को सफर कर रही थी, आपसे बेहतर उसको कोई नहीं समझ सकता.
जब मैं दो
तो
बच्चों को लेके, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा छोटा वाला बेटा 1.5 साल का था, जब दो छोटे बच्चों को लेके अकेले रह रही हूँ, तो वो स्ट्रगल ऑलरेडी देयर, तो वो स्ट्रगल एक औरत अपने जानबूझ के क्यों लेगी। पर आराम की जिंदगी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, घर में सब कुछ आराम है, तो वो इतना मेहनत वो क्यों करेगी अकेले।
जी
ये एक सोचने की बात है।
तो शिखा, फैमिली सपोर्ट था, तो जैसे आपने बोला कि ना स्ट्रेस बहुत था, मेंटल ट्रॉमा बहुत था, आप सुसाइडल भी थी, तो आपने किसी तरीके की थेरेपी या किसी तरीके की कोई और ऐसे सपोर्ट ग्रुप या कोई हेल्प लेने की कोशिश करी?
मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत गूगल किया था कि कोई मुझे मिल जाए जहां मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कैन आई कॉन्टैक्ट समबडी, कि उनको समझा सके, कुछ कर सके। जिस दिन मेरी मेरे साथ ये लास्ट डे, जिस दिन मैंने डिसाइड किया था ये स्टेप लेने के लिए, उसके पहले भी मैंने बहुत सर्च की थी। काफी एनजीओ के लिस्ट थे, अब्यूज के लिस्ट थे कि आप इन पे फोन करो, कोई फोन नंबर वर्क नहीं किया, कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। मुझे पुलिस स्टेशन का नहीं पता था तो मैंने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट नहीं किया। मुझे शायद पता होता तो मैं करती, पर मैंने जो गूगल में नंबर्स थे उसमें बहुत कांटेक्ट किया कि कोई मुझे हेल्प करे और मुझे बताए कि मैं मेरे को क्या करना चाहिए। बट आई थिंक वो 4 साल पहले वो कोई सिस्टम था ही नहीं, कोई मदद मिली नहीं। अगर ये मदद मुझे पहले मिलती, जो मेरे अगर हस्बैंड को थोड़ा डराया जाता, समझाया जाता, तो शायद मुझे ये स्टेप नहीं लेना पड़ता।
बड़ी दुख की बात है शिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस हमारे देश में इतनी प्रेवलेंट है, और उसके बावजूद हेल्प जो है वो इतनी रेडली अवेलेबल नहीं है. जबकि इसके लिए आई थिंक जितनी एनजीओज को आपने फ़ोन करा, आई थिंक आपको हेल्प मिलनी चाहिए थी. तो शिखा, आज आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? और अगर मैं आज आपसे पूछूं कि यहाँ से आगे आप अपनी जिंदगी को किस नज़रिए से देखती हैं, आप हमारे सोसाइटी को अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं, उन औरतों को देना चाहती हैं जो आज इससे स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप कैसे सम अप करेंगी पूरी सिचुएशन को?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगी कि कोर्ट में जाना और लड़ना आसान नहीं है। मैं 4 साल से लड़ रही हूँ, कोर्ट में लड़ना आसान नहीं है। अगर आपके पास उपाय है, आप उसको पहले ही सॉल्व करें। पुलिस स्टेशन जाए, जो भी करना हो, फैमिली को बिठाए, पंचायत बिठाए, जो भी करना हो, अगर डोमेस्टिक अब्यूज है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पहले स्टॉप करें, फर्स्ट डे से स्टॉप करें। आज अगर मैंने ये एक्शन फर्स्ट डे लिया होता तो मेरी आज ये दिन नहीं होती। वो डर जाता कि मैं कुछ करूंगा तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। ये चीज बहुत जरूरी है सबको समझने की कि हम इसको इग्नोर ना करें। बिहेवियर चेंज नहीं होता है, नेचर चेंज नहीं होता, बट इंसान कंट्रोल जरूर कर लेता है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में भी किसी गुस्सा आए तो किसी पे हाथ उठा के आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप कंट्रोल कर सकते हो एंड ये बिहेवियर आप घर पे दिखा सकते हो। सो इफ यू स्टॉप फ्रॉम द डे वन, यू डोंट हैव टू सफर लेटर, योर किड्स डोंट हैव टू सफर, बिकॉज डाइवोर्स इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। डाइवोर्स वी डू बिकॉज वी आर हैव लेफ्ट विद नो चॉइस, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन।
तो आई थिंक जो आप कह रही हैं शिखा, वो ये है कि अगर शादी बच सकती है किसी भी तरीके से, तो हमारा पहला कोशिश शादी को बचाने का होना चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं काम कर रहा तो आई थिंक डिवोर्स एक लास्ट रिजॉर्ट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप देना चाह रही हैं कि अगर वायलेंस हो रही है तो पहले दिन से आवाज उठाएं, उसको बढ़ने मत दीजिए, उसको इनकरेज मत कीजिए। आई थिंक आवाज ना उठाना भी एक तरीके की इनकरेजमेंट है। सो आई थिंक दीज आर वेरी टू इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो आप दे रही हैं चिखा। और इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगी इन?
मैं जब मैंने अपनी जिंदगी दोबारा चालू करने की कोशिश की थी, मेरे इतना मेंटल सोचना था, मैं बहुत पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की थी शादी के पहले, मैं बहुत चेंज हो गई बिकॉज द सिचुएशन ऐसा हो गया था, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज के लिए भी करेज नहीं आता था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, मुझे डर लगता था हर चीज से। बट जब मैंने इसका डिसीजन किया तो मैंने यही सोचा कि जिंदगी ने मुझे दोबारा एक मौका दिया है और मुझे ये दोबारा मौका को यूज करना चाहिए। मे भी भगवान चाहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसे घुट घुट के जीव नहीं, मैं आई एम मेड फॉर समथिंग बिगर। ऐसी सिचुएशन में कि इतना स्ट्रगल करने के बाद अकेले बच्चों को पैदा मैंने एक्चुअली मेरे बच्चों को भी मैंने अकेले ही संभाला, कोई हेल्प नहीं थी मुझे। तो मुझे सब बोलते थे शादी के अलग होने के बाद कि आप बच्चों को कैसे संभालोगे, ऐसे पहले भी मैंने ही संभाला है तो अभी भी मुझे ही करना है, मेरे लिए अब और इजी हो गया, वो मेंटल स्ट्रेस नहीं है, मुझे अपने हिसाब से मैं करती हूँ। अगर हमें मुझे बच्चे बीमार हैं मेरे, तो मैं रात भर अगर उठी हुई हूँ तो मैं सुबह अगर खिचड़ी बना सकती हूँ तो मैं खिचड़ी बना के अपना और बच्चों का पेट भर सकती हूँ।
अब इंटरव्यू हम खत्म कर रहे हैं, तो जाते जाते कोई आखिरी मैसेज कुछ और जो आप कहना चाहेंगी?
जिंदगी में आपको ये मौका दोबारा जीने का मिल रहा है तो इसे वेस्ट ना करें। शायद भगवान चाहते थे कि जो जिंदगी आप जी रहे थे आप उससे बेहतर जिंदगी के लिए बने हो, इसीलिए आप ये दोबारा मौका मिला है, उसे डटकर लड़े। लाइफ इज नॉट इजी बट यू आर स्ट्रॉन्ग टू बेर इट। आप स्ट्रांग हो और उसको लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए आप में है, आप लड़ो। जब आप जब बैड शादी में रहते हो तो भी स्ट्रेंथ चाहिए, आप बाहर निकलते हो तो भी स्ट्रेंथ चाहिए, बट उसको लेकर जिंदगी आगे बढ़े। थैंक यू।
थैंक यू सो मच शिखा। एंड जब आप लोगों को सुनती हूँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं विमेन एम्पावरमेंट, अभी विमेन्स डे था तो मैं देखती हूँ कि हम इतने बड़े बड़े ये एंटरटेनर्स हैं हमारे, उनको लेकर के आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आपकी जैसी लेडीज जिन्होंने रियल लाइफ में ये स्ट्रगल लड़ी है और और आज भी लड़ रही हैं और इतनी ब्रेवली अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अपने आप को एम्पावर कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सो आई थिंक मेरे लिए तो आप सब एक एग्जाम्पल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, एंड आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है।
सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ,
बोलो।
ये कि आजकल की हम लोग सब पढ़ी लिखी लड़कियां होती है पर थोड़ा अपना फाइनेंस संभाल के रखे तो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि
बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। आई थिंक
मैं
आपका पॉइंट वैलिड
हाँ
है।
क्योंकि मैं नॉन वर्किंग थी बट स्टिल मेरे पास ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, बट वर्किंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद के पैसे कमाना भी इम्पोर्टेंट है, उसको अलग रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट
बिल्कुल।
क्योंकि 4 साल हो गए मुझे, मुझे 1 रुपए का सपोर्ट नहीं मिला है मेरे एक्स की फैमिली से, ना बच्चों के लिए ना मेरे लिए। तब गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट विदाउट मनी विद टू चिल्ड्रन।
बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक यू नो शिखा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शायद हमारी फैमिलीज के लिए भी है, हमारी सोसाइटी के लिए भी है, कि जब भी हम लड़के और लड़की को बड़ा करते हैं, बहुत फर्क आ गया है, लड़कियों को बहुत एडुकेशन और इंडिपेंडेंट यू नो पेरेंट्स बना रहे हैं। बट मैं शायद ये मैसेज यहाँ से फिर देना चाहूंगी आपकी बात सुनकर, कि इंडिपेंडेंट बनाना और यू नो उनको एडुकेट करना एक बात है, बट साथ ही उनमें ये इनकलकेट कीजिए कि उन्होंने अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, ताकि उन्हें जिंदगी में कभी दोबारा ये ना सुनना पड़े कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो आई थिंक हमें बचपन से ही, जैसे हम अपने लड़कों को सिखाते हैं कि तुमने परिवार को संभालना है, वही फीलिंग्स आई थिंक हमें अपनी लड़कियों को भी देनी चाहिए, ताकि शुरू से उनमें ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला जो फीलिंग है वो रहे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे बता रही हैं शिखा, थैंक यू।
मैंने एक्चुअली अभी भी मैं वर्क नहीं करती हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मैं कितनी बार खौफ जाती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहाँ रास्ते में रहती, मैं क्या करती,
जी
सोच के मेरा दिल घबरा जाता है कि मेरी क्या सिचुएशन होती मैं सोच भी नहीं सकती।
थैंक यू शिखा, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, अपनी जिंदगी की यू नो डिफिकल्ट टाइम्स को शेयर किया, एंड आई होप हमारा एम वही है कि शायद आपकी स्टोरी किसी को अगर इंस्पायर कर सके बाहर, तो आई थिंक हमारा पर्पस अचीव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच शिखा हमारे शो पे आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए।
थैंक यू सो मच मैक।
आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट सारे।